हरे कृष्णा। तो आज के शनिवार साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का जो प्रवचन है, कुछ कारणों की वजह से हिंदी में कथा होंगी, और पहली बात तो मुझे हिंदी बोलने की आदत नहीं है, मेरी मातृभाषा भी कुछ अलग ही है, और ज्यादातर मैं मराठी में कभी कभी प्रवचन दे देता हूँ, पर आज सभी वैष्णव की कृपा से हिंदी में कथा करने का अवसर मिला है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, अच्छी से अच्छी हिंदी बोलने का प्रयास करूंगा, और बीच बीच में कभी मराठी शब्द आ गए तो कृपया मुझे सहन करो, या कुछ ऐसा जोक समझ के हंस लेना। भगवान की कथा किसी भी भाषा में की तो कथा ही होती है। तो आज हम एक विशेष विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है श्रीमद् भागवत की महानता, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले महीने में 12 अगस्त को है, तो इस अवसर पर हम श्रीमद् भागवत धम्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ाने हेतु, या भगवान की कथा के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा बढ़ाने हेतु आज हम भागवतम के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। भागवतम की आज के लेक्चर में भागवतम की भागवत कैसे प्रकट हुआ है, और भागवतम की महानता, और भागवतम हमारे जीवन में सेमी प्रैक्टिकल है क्या नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो भागवत ग्रंथ है, जो लोग वैरागी है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और अपना हेयर सेव कर लिया है, वस्त्र बदल लिए हैं, और जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं संसार से, सभी कर्तव्य छोड़ दिए सब लोगों ने, ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम है, पर वास्तव में वो तो है ही, उनके लिए तो है ही, जरूरी है, पर श्रीमद् भागवतम ऐसा एक ग्रंथ है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, और इस संसार के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने मनुष्य शरीर धारण किया है, उन सबके लिए श्रीमद् भागवतम है। विशेष रूप से जो लोग इस संसार में असंतुष्ट है, उनके लिए बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण औषधि श्रीमद् भागवतम है। तो भागवतम का जो ज्ञान है, हमें दुर्भाग्यवश मिला नहीं है, क्योंकि हम बचपन से किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त की है, पर हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं। और भागवतम ऐसे कहता है कि कौमार आचरति प्राज्ञो धर्मान भागवता ही, जब हम 5 साल के हो जाते हैं, उसी समय इस भागवतम का ज्ञान हमें होना चाहिए, ताकि हम हमारा अगला जीवन एक अच्छा मनुष्य, आदर्श मनुष्य जैसा हम जीवन जी पाए। तो ये जो भागवत है, केवल पढ़ने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं है, तो हम अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर कोई इस भागवतम को इस हमारे जीवन में उतारता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में संतुष्टि का वो अनुभव कर पाता है व्यक्ति। इस संसार में सभी लोग सुख की खोज में, संतुष्टि की खोज में लगे हुए हैं। दो तरीके से लोग सुख की खोज में लगे हैं, एक तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए अपना एक ऐसा स्टेटस मेंटेन करते हैं, जिसको जिंदगी भर बनाए रखने के लिए लोग अपनी लंबी आयु बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक तो लंबी आयु बढ़ाते हैं, और एक दूसरा अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक मैं इस साधनों का भोग कर सकूं और जीवन में खुश रह सकूं। परंतु इतने सारे प्रयास करने के बाद भी हम असंतुष्ट रहते हैं, क्यों ऐसा होता है? भागवतम में विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। मतलब ये संसार में जितने भी लोग हैं, कृष्ण से विमुख हो चुके हैं, और कृष्ण से विमुख होने के कारण जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुखी दुखितस्य। बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें से बताया गया है कि इस संसार में जीव भटकता है सुख की खोज में, और सुख की तलाश करते हुए वो अपने जीवन में दुख को कम से कम करने का प्रयास करता है, दबाता है अपने जीवन का दुख, और साथ साथ सुख बढ़ाना चाहता है, और ऐसी संघर्ष में अपना जीवन बिता देता है, और पहले तो ही कम आयु है हमारे मनुष्य जीवन की, और इस संघर्ष में ही अपना जीवन बिताने के कारण उसको जीवन में केवल नैराश्य प्राप्त होता है। परंतु अगर इस संसार में हम सुख खोजने का जो दृष्टिकोण है, उद्देश्य जो है वो सही है, पर मार्ग गलत चुन लिया है, रास्ता गलत चुनने के कारण हमें असफलता मिलती है, और इस असफलता के कारण हम नैराश्य में आ जाते हैं, संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। इतना सारा इस संसार में फैसिलिटी है, सुविधा होते हुए भी हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारे मन की जो इच्छाएं है, इच्छा कई जन्मों से हमने हमारे हृदय में धारण कर लिए है। तो संतुष्टि का कौन सा मार्ग है? तो वो मार्ग है श्रीमद् भागवतम। आज हम चर्चा करने वाले हैं भागवतम के बारे में, भागवतम की महिमा के बारे में। तो भागवतम में क्या है? भागवतम में प्रमुख तीन चीजों का वर्णन आता है, एक भक्त, दूसरा भगवान, और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो भक्तिमय जीवन है, भक्ति की प्रोसेस है, उसका वर्णन आता है। तो पहले तो हम इस प्रसंग से शुरू करेंगे जहां पे इस भागवतम की चर्चा हुई थी। भागवतम के प्रथम स्कंद में इसका वर्णन आता है, प्रथम अध्याय में बहुत ही अच्छी तरह से सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराज को इस कथा का वर्णन करते हैं। तो 5000 साल पहले की ये बात है। 5000 साल पहले नैमिषारण्य नाम का एक स्थान है, वहां पे इस संसार के जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब इकट्ठा हुए थे, और इस जगत का कल्याण करने हेतु उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था, और उस यज्ञ, ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल तक वो यज्ञ चला था, पर यज्ञ करते हुए और यज्ञ संपन्न होने के बाद उनको कुछ भी निष्पन्न नहीं हुआ, उनको कुछ हाथ में नहीं लगा, और उन्होंने सोचा कि इतने साल हमने यज्ञ किया पर लोगों का कल्याण कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में उनको कुछ हाथ में यश नहीं मिला, उनको असफल हो गए। तब उन ऋषियों के बीच में एक महान संत आते हैं, उनका नाम है सुत गोस्वामी, और जब सुत गोस्वामी उनके नैमिषारण्य में प्रवेश करते हैं तो सभी वहां के ऋषि मुनियों को बहुत ही बड़ा आनंद होता है, और सभी लोग सुत गोस्वामी का स्वागत करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, और उनको एक ऊंचा आसन देते हैं और उनका पूजा करते हैं, उनको फूलों की माला पहनाते हैं, और 88,000 जो ऋषि हैं उनमें से जो प्रमुख थे शौनक ऋषि, ऐसे भागवतम में वर्णन आता है, शौनक आदि ऋषि, इसका मतलब यह है कि शौनक ऋषि के साथ 88,000 ऋषि भी थे, और वे साथ मिलकर प्रश्न पूछते थे सुत गोस्वामी को। तो उन्होंने नैमिषारण्य में 6 प्रश्न पूछे थे, वे 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके उत्तर के रूप में पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि इस संसार में जितने भी जीव है उनका कल्याण कैसे होगा, ये पहला प्रश्न पूछा था। दूसरा प्रश्न पूछा था सभी वेदों का सार क्या है, और तीसरा प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उनके अवतार का उद्देश्य क्या था, और उसके बाद चौथा प्रश्न पूछा था पुरुष अवतार क्या है, पुरुष अवतार के बारे में वर्णन कीजिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा था लीला अवतार का वर्णन कीजिए, और छठवां प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम जाने के पश्चात धर्म ने किसका आश्रय लिया था, ये छठवां प्रश्न पूछा था, और इसका उत्तर क्रमशः सुत गोस्वामी बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं सुत गोस्वामी, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जीव है, सुख की खोज में लगे हुए हैं, तो इनका कल्याण कैसे होगा? तो सुत गोस्वामी तुरंत उसका उत्तर देते हैं, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। बहुत अच्छी तरह से इस श्लोक का अर्थ है, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में अधोक्षज भगवान, जो इंद्रियों के जानने से परे है, ऐसे भगवान अधोक्षज भगवान की अगर अहेतु की निस्वार्थ भावना से अगर कोई भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी आराधना करता है, तो ये आत्मा सुप्रसिद्धति, वो उनका जो आत्मा है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, और कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। क्यों ऐसे सुत गोस्वामी बता पाते हैं ये उत्तर? क्योंकि अभी अभी वो भागवत कथा सुन के आए थे सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से, और उनके हृदय में पूरी तरह से भागवत बैठा हुआ है, और वही उत्तर उनके मुख से निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे हृदय में जो है उसी स्तर पर हम दूसरों को मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो सुध गोस्वामी शुद्ध भक्त है। दूसरा प्रश्न पूछा था उन्होंने, सभी वेदों का सार क्या है? सभी वेदों का सार भी वही बताते हैं कि भक्ति में सेवा। और तीसरा जो प्रश्न था उनका, तीसरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य कौन सा है, क्या उद्देश्य है उनके अवतार का। तो इसके उत्तर में सुध गोस्वामी बताते हैं कि सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु भगवान के नाम रूप गुण और विशेष रूप से लीला की प्रति आकर्षण निर्माण करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न जो पूछा था उन्होंने, पुरुष अवतार कौन है? तो पुरुष अवतार का वर्णन सुध गोस्वामी बताते हैं, कारणोदकशायी विष्णु उनसे और एक दूसरा अवतार विस्तारित रूप आता है, गर्भोदकशायी विष्णु, और गर्भोदकशायी विष्णु से तीसरा विस्तारित रूप है क्षीरोदकशायी विष्णु। इन तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन सुध गोस्वामी करते हैं। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न पूछा था, पांचवा प्रश्न कि भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर श्रीमद भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में अवतारी श्री कृष्ण नाम का एक अध्याय है, उसमें करीब 25 अवतारों का वर्णन सुध गोस्वामी करते हैं। उसके पश्चात छठवा जो प्रश्न पूछा था, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन चले जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया था? ये छठवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके उत्तर में सुध गोस्वामी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सहा कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को उधुनोदितः। कृष्ण स्वधाम उपगते, श्री कृष्ण अपने धाम चले गए, उसके बाद कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सहा, धर्म और ज्ञान को भी लेके गए थे। फिर इस कलयुग के लोगों का क्या होगा, इस कारण से भगवान ने स्वयं को ग्रंथ अवतार के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में इस कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने हेतु इस ज्ञान के रूप में भगवान प्रकट हुए। मतलब श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम और कृष्ण इनमें कोई अंतर नहीं है, भगवान का ही एक ग्रंथ अवतार श्रीमद् भागवतम है। तो कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण से सभी अवतार आते हैं, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, राम अवतार, नरसिंह अवतार, ये सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। हर एक युग में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अपने अंश और कला के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान से सभी अवतार आते हैं और ये सभी अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण और ग्रंथ भागवत इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी की जो दृष्टि थी, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि भागवत ये स्वयं कृष्ण है, इसमें स्वयं कृष्ण का ही हर एक श्लोक में कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है। अगर कोई आस्वादन करना चाहता है तो वो भागवतम की कृपा से, वैष्णव की कृपा से आस्वादन कर सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी मैंने ऐसा सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम ये स्वयं कृष्ण है, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है और मैं श्रीमद् भागवतम के साथ उनके सेवक के रूप में अमेरिका जा रहा हूं। तो ये प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण था भागवतम के प्रति। इसलिए प्रभुपाद जी की इतनी श्रद्धा थी भागवतम पे, भागवतम पर। प्रभुपाद जी जब गए थे शुरू में अमेरिका 1965 में, तब प्रभुपाद जी साथ में भागवतम लेके गए थे। उनको इतना आत्मविश्वास था कि इस अमेरिका ऐसी एक जगह है जहां पे किसी को कृष्ण क्या है पता नहीं है, केवल भारत में हिंदू संस्कृति का पालन होता है ये पता होता है लोगों को था, पर कृष्ण कौन है पता नहीं, भागवतम क्या है पता नहीं। तो ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने पहले भागवतम दिया था। प्रभुपाद जी का इतना आत्मविश्वास था, शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुरुत्सताम। प्रभुपाद जी का भागवतम के ऊपर पूरी श्रद्धा थी कि भागवतम ही लोगों को चेंज करने वाला है, इसलिए प्रभुपाद भागवतम लेके गए थे साथ में। ये वह भागवतम की नैमिषारण्य में चर्चा। उसके बाद भागवतम कैसे प्रकट हुआ इसके बारे में हम थोड़ी 5 मिनट चर्चा करेंगे। जब कलयुग द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग शुरू हो रहा था, वो जो संध्या समय था, उस समय व्यासदेव जी ने देखा कि आने वाला जो कलयुग है इतना भयंकर है, प्रायण अल्पायुषा कलो वस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रुतः, प्रायण अल्पायुषा, कलियुग के जो लोग हैं अल्प आयु होंगे, उनकी शुद्धता नहीं होंगी उनके पास, उनकी बुद्धि कम होंगी, उनकी आयु कम होंगी, उनकी हाइट जो है उनकी ऊंचाई ये भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और कलियुग का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि लोग इतने त्रस्त रहेंगे अपने जीवन में, और लोग एक दूसरे को तकलीफ तो कम देंगे पर अपने मन से ज्यादा त्रस्त रहेंगे, और इस मन रूपी असुर जो है इन तकलीफों से इन उलझनों से निकालने के लिए इन लोगों के लिए कुछ तो अच्छा मार्ग ढूंढना जरूरी है। तब व्यासदेव जी के हृदय में दया भाव उत्पन्न हुआ और वो चिंतन करने लगे, भगवान को उन्होंने प्रणाम किया, और तब उन्होंने पहले तो एक ही वेद था यजुर्वेद, और पहले लोग श्रुति धरते, एक बार सुनने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी में याद रखते थे, कभी भी नहीं भूलते थे ऐसा ज्ञान एक बार सुनने से। तो व्यासदेव जी ने ये सब शास्त्र लिखित स्वरूप में किया, एक वेदों से उन्होंने चार भाग किए, चार वेद किए, और चार वेद लिखने के बाद उन्होंने उपनिषद लिखे, 108 उपनिषद की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, संहिता लिखी, और ऐसे अलग अलग महाभारत जैसे महाकाव्य लिखा, और इतना सब शास्त्र लिखने के बाद व्यासदेव जी सरस्वती की नदी की तट पर बैठे थे और चिंतन कर रहे थे कि मैं इतना सारा शास्त्र मैंने लिखा है फिर भी मुझे मेरे जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा था उनको। तब उस चिंतित अवस्था में व्यासदेव बैठे थे और उसी समय उनके जो गुरु है नारद मुनि वहां पे प्रकट होते हैं, और नारद जी जैसे ही प्रकट होते तब व्यासदेव जी को बड़ा आनंद होता है अपने गुरु महाराज का आगमन से, उनको आसन देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और उनको पूछते हैं कि हे प्रभु मैंने इतना सारा शास्त्र लिखा है फिर भी मेरे जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है, क्या कारण है मेरा असंतुष्टि का। तब नारद मुनि बहुत अच्छा उनको समझाते हैं कि देखिए आपने जो जिस धर्म का वर्णन किया है, जो पुरुषार्थ का वर्णन किया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये आप भूल चुके हो, और इसमें गड़बड़ प्रॉब्लम क्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष में, धर्म पालन करना है किस लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, और अर्थ प्राप्त किस लिए करना है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और जब इंद्रिय तृप्ति करके इंद्रिय भोग करके पक जाता है आदमी, थक जाता है, तब इस तकलीफ से निकलना चाहता है और भागना चाहता है, तो क्या उसके लिए मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। फिर मोक्ष प्राप्त करने के बाद किसमें किधर जाना है, ब्रह्मन में विलीन होना है, पर ब्रह्मन में जाना ये जीव का स्वभाव नहीं है, जीव तो एक्टिव है, उसको सेवा करना उसका स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास मतलब सेवा करना, अगर वो ब्रह्मन में जाके निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा तो ज्यादा दिन वहां पे नहीं रह पाएगा, क्यों नहीं रह पाएगा, आब्रह्म भूनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, फिर से वो इस जगत में आएगा और ऐसे हमेशा हमेशा के लिए भटकते रहेगा। तो इसके लिए उपयुक्त मार्ग कौन सा है, इसके बारे में नारद जी व्यासदेव जी को सुनाते हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। आपने जो शास्त्र का वर्णन किया है उस शास्त्र में नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, अपि अच्युत, अच्युत मीन्स भगवान श्री कृष्ण, अच्युत भाव वर्जितम, भगवान श्री कृष्ण का जो भाव है उनकी जो भक्ति है, जय श्री राधा गोविंद रे भगवान की जय, उनकी भक्ति का आपने वर्णन नहीं किया है, इस कारण से आपको संतुष्टि नहीं मिली है। तब व्यासदेव जी सुनने के बाद व्यासदेव जी को बड़ा आनंद होता है और नारद जी कहते हैं कि देखिए ऐसा शास्त्र लिखो कि किरात हुनिंद्र पुलंद पुलकशा अबीर शुंबा यवना खसादया, इन सभी जाति के जो लोग हैं जिनकी भक्ति में आने का कोई चांस नहीं है, वो भी लोग अगर भक्त के संपर्क में आ गए, भगवान के नाम के संपर्क में आ गए, भगवान के ग्रंथ के संपर्क में आ गए, तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे और भक्त बन जाएंगे, ऐसा ग्रंथ लिखो। तो हम उदाहरण के रूप में देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हर एक देश में भगवान की भक्ति का प्रचार हो चुका है, तो श्रील प्रभुपाद जी की महानता और उनकी कृपा है। ऐसे लोग है पाश्चात्य देशों में म्लेच्छ जैसा आचरण करते, उनको क्या खाना है क्या पीना है इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं, फिर भी वो लोग भगवान के भक्त बन गए, तो ये भागवतम की कृपा है और वैष्णव की कृपा है। तो शुद्ध भक्ति जो है भगवान की, ये शुद्ध भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है, और शुद्ध भक्ति सभी शास्त्रों का सार है, सवर्णन किया गया है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्व विद्या अल्पश्च काल बहुविघ्नतांश यत सारभूतम तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अनंत शास्त्रम बहुलाश्व विद्या, अनंत प्रकार के शास्त्र है और उन शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी गई है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्व विद्या, और अल्पश्च काल, मनुष्य का काल जो है जीवन का आयुर्मान बहुत ही कम है। अल्पश्च काल बहुविघ्नतांश, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे विघ्न है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्व विद्या, अल्पश्च काल बहुविघ्नतांश, यत सार भूतम, इनमें से सभी शास्त्रों में से जो सार निकाला गया है, यत सार भूतम तद उपासनीयम, हरि की भक्ति, भगवान की उपासना, यत सार भूतम तद उपासनीयम। हंसो यथा क्षीर विवांबु मध्या, हंस नाम का ऐसा एक पक्षी है जिसके सामने पानी और दूध मिलाकर अगर रख दिया तो उसमें से केवल दूध पी लेता है हंस। उसी तरह से नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों ने इस वैदिक शास्त्रों से एक सार निकाल के हम जैसे बद्ध जीवों को प्रदान किया है। वो सार क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। तो इस श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में हम थोड़ा कुछ श्लोक के वर्णन करेंगे। अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्याजनतो विद्वांस चक्रे सात्वत संविताम। इसमें भागवतम की महिमा का वर्णन किया गया है। अनर्थ उपशमं साक्षात्, जो व्यक्ति अदोक्षज भक्ति योग अदोक्षजे, भगवान अदोक्षज की अगर वो किस व्यक्ति भक्ति करता है उसके जीवन में जो अनवांटेड चीजें हैं, जो आदतें हैं, वो अपने आप निकल जाती है। मतलब अनर्थ उपशमं साक्षात, हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, अनेक जन्मों से हमने इन अनर्थों को मित्र बना लिया है, पर वास्तव में ये अनर्थ हमारे शत्रु है। अनर्थ उपशमं साक्षात भक्ति योग अदोक्षजे, अगर कोई भक्ति करता है भगवान की तो इन अनर्थों से हमारी मुक्ति हो जाती है। और इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? चक्रे सात्वत संहिता, मतलब श्रीमद् भागवतम, इसमें वर्णन किया गया, ये भागवतम की महानता है। परंतु जो दुर्भाग्यवश जो लोग हैं, जो अश्रद्धालु, ये जो नास्तिक है, बहुत ही पाप कर चुके हैं, इस अच्छे मार्ग का स्वीकार नहीं करते, ये उनके जीवन का दुर्भाग्य है। और ये भक्तों के संग में आ गए तो ये भी लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। और ये भागवतम सुनने की महानता, इनका फलश्रुति क्या है, इसके बारे में भागवतम में वर्णन आता है। यशा वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापह। यशा वै श्रूयमानायाम, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, यशा वै श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान की कथा सुनता है, भक्तिर उत्पदते पुंसा, उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। और उसी समय जैसे ही भक्ति जागृत होती है उसी समय तीन फायदे उसके जीवन में होते हैं। पहला फायदा, शोक से मुक्त हो जाता है, मोह से मुक्त हो जाता है और भय से मुक्त हो जाता है। और इन तीन चीजों से काफी जीवन में प्रॉब्लम चल रही है आजकल। हमारे जीवन में जो भूतकाल में जो जो घटनाएं हमारे साथ हुई है, किसी ने हमारा इंसल्ट किया है, किसी ने अपमान किया है, किसी ने हमें चोट पहुंचाई, किसी ने हमारा कुछ नुकसान किया है, उसके बारे में हम शोक करते रहते हैं और भविष्य के बारे में हम चिंता करते रहते हैं। भविष्य के बारे में हमारे भय हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है और इन दोनों के उलझनों के कारण वर्तमान में हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसलिए वर्तमान में हमेशा हम संभ्रम में रहते हैं। इसलिए अगर भक्ति प्रकट हो जाती है तो शोक मोह भयापह, इनमें से हम मुक्त हो जाते हैं। और ये भागवतम सुनने की फलश्रुति है। तो आगे वर्णन आता है, हम इस संसार में रहते हुए संतुष्टि कैसे अनुभव कर पाएंगे? इसका वर्णन स्वयं व्यासदेव जी करते हैं। व्यासदेव जी बताते हैं कि मैं इतने सारे शास्त्र मैंने लिखा था, इन शास्त्रों का लिखने के पश्चात मेरे मन में संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। व्यासदेव अपने स्वयं के शब्दों में वर्णन करते हैं। वेद शास्त्र पुराण कही ये वेद व्यास, तथापि चित्तेर नाही पाए ना प्रकाश, यखने श्री भागवत जिह्वाय स्फुरिला, तत्क्षण चित्त वृत्ति प्रसन्न होइला। बहुत सुंदर श्लोक है। वेद शास्त्र पुराण कही ये वेद व्यास, व्यासदेव जी ने सभी शास्त्र लिखे थे, पर तथापि चित्तेर नाही प्रकाश, मतलब उनका जो चित्त है संतुष्टि नहीं मिला उनको ये सब लिखने के बाद। जैसे ही यखणे श्री भागवत जिह्वाय स्फुरिला, जैसे ही उनकी जिह्वा भागवत स्फुरित हुआ, उसी क्षण उनके हृदय में तत्क्षण चित्त वृत्ति प्रसन्न होइला। और प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर हमारे जीवन में सब कुछ है पर हम संतुष्ट नहीं रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं। है कि नहीं। इसलिए हमारे गुरुजी हमेशा हमको कहते थे, गोधन अश्वधन रत्न धन खान, संतुष्टि धन ना रहे, ये सब धूल समान। हमारे जीवन में इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आजकल हम देखते हैं बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट स्टार, इतने बड़े बड़े लोग, इनके जीवन में क्या कमी है? इनके जीवन में सुंदरता है, इनके जीवन में पैसा है, इनके जीवन में प्रतिष्ठा है, सब कुछ होते हुए भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम हमारा जीवन का सफर करते हुए, हम जीवन जीते हुए, हमने इसके ऊपर चिंतन करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी हम खुश नहीं है, कि फिर भी हम प्रसन्न नहीं है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने कुछ तो हमारे जीवन में मिस कर दिया है, और क्या मिस किया है हमने? वो भगवान को छोड़ दिया है हमने, और भगवान को भूलने के कारण इस संसार में हम अलग अलग योनि में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करने के करते हुए हम हमेशा दुख का अनुभव करते हैं। और आगे श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है, इसका कुछ उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। पहले श्लोक गालेंगे, निगमकल्पतरो गलितम फलम शुक मुखादमृते द्रव्य सम्मितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम के पहले अध्याय के दूसरा श्लोक है, दूसरे नंबर का श्लोक है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम मीन्स सभी वैदिक शास्त्र, कल्पतरो गलितम फलम, इस कल्प वृक्ष से एक पका हुआ फल आया है, वो है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य सम्मितम। और जो पका हुआ फल होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई मीठा फल है, उस मीठे फल को एक तोता चख लेता है, तो इसका मतलब यह होता है कि इन सारे फलों में से वो फल अधिक मीठा है। और सुखदेव गोस्वामी की तुलना तोता से की गई है, सुखदेव गोस्वामी, शुक मतलब तोता, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त ने इस भागवतम का आस्वादन किया है, और इस आस्वादन किए हुए जो भागवतम की वाणी है उनके श्रीमुख से निकलती है, और जो व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्तों की मुख से भागवतम सुनता है तो वो रसिका भुवि भावुका, भाविभोर हो जाता है, और ऐसा रस में डूब जाता है, और उनको भौतिक रस की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो उच्च रस उसने प्राप्त कर लिया है। ऐसा वर्णन किया गया है कि सभी वैदिक शास्त्र की तुलना एक वृक्ष से की गई है, और उस वृक्ष का जो फूल होता है, फूलों की तुलना कर्मकांड और जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनसे की गई है। फूल की तुलना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या कर्मकांड से की गई है, क्योंकि फूल बहुत ही सुंदर दिखता है, आकर्षक होता है। उसी तरह से वेदों में जो कर्मकांड का वर्णन किया गया है, बहुत ही आकर्षक है, जीव को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि तुरंत उसके उसमें सुख प्राप्ति की भाषा का वर्णन किया गया है। और उसी वृक्ष का जो फल होता है, फूल का रूपांतर फल में होता है, और वो फल शुरू में कच्चा होता है, और ऐसे वो जो फल है, अपरिपक्व जो फल है, उसकी तुलना उपनिषदों से की गई है। और उपनिषदों में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद नाम का ग्रंथ है उसके ऊपर भाष्य किया है, तो उसमें काफी मंत्रों का वर्णन है, और वो मंत्र प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण है, उच्चारण करने के लिए भी हमें बहुत तकलीफ होती है, हम ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये जो उपनिषद है, पढ़ने के बाद भी हमें मिठास नहीं आती है, तो इनकी तुलना, उपनिषदों की तुलना कच्चे फलों से की गई है। और वही फल जब पकता है, और पकने के बाद जो पका हुआ फल है, उसकी तुलना श्रीमद् भागवतम से की गई है, और उस फल में ना छिलका है ना गुठली है, केवल पीने की वर्णन किया गया है भागवतम में। रसिका भुवि भावुका, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतम पीना चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो ये जो लिखा है, ये कोई हमारे जैसे साधारण व्यक्ति ने लिखा नहीं, वो रोज के जीवन में अनुभव करते हैं सब चीजें, इसलिए वो लिख पाते हैं, इसलिए वो भागवतम पीने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस भागवतम में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, और 335 अध्याय है श्रीमद् भागवतम में, और कुल मिलाकर इस भागवतम के कुछ एक कई स्कंदों के एक या दो या कुछ स्कंदों के चार चार भागों में विभाजन किया गया है, तो करीब 18 किताबें इस भागवतम की है, तो बहुत सुंदर ग्रंथ है। खास करके विशेष रूप से इस कलयुग के जीवों के लिए, इनका उद्धार करने हेतु इस भागवतम की रचना की गई है। और इस भागवतम में 10 विषयों की चर्चा की गई है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतया मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रया। इस 10 विषयों की चर्चा इस भागवतम में की गई है। जैसे भगवद्गीता में 5 विषयों की चर्चा है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, उसी तरह से भागवतम में 10 विषय की चर्चा हुई है। अत्र सर्ग, सर्ग मीन्स जो गर्भोदक्षयी विष्णु द्वारा इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो भौतिक सृष्टि निर्माण के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, इसका जो निर्माण है सृष्टि निर्मिति का, वो सर्ग में आता है। उसके पश्चात विसर्ग होता है, वो विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं। हर एक जीव की कर्म, स्वभाव और इच्छा के अनुसार उनको शरीर दिया जाता है। ये हो गया विसर्ग। अत्र सर्ग विसर्ग से स्थानम, स्थान अलग अलग जीवों को ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान दिया गया है। स्थानम पोषण, उनका पोषण भक्ति के रूप में आध्यात्मिक पोषण करना। स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतर ईशानुकथा मुक्ति निरोध आश्रय, ऐसे 10 विषयों की चर्चा इस श्रीमद् भागवतम में की गई है। और ऐसा भागवत अगर किसी को समझना है, भागवतम में रस प्राप्त करना है, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, यहां भागवत पढ़े वैष्णवर स्थाने एकांत चित्त करे चैतन्य चरणे। जिन लोगों ने इस भागवतम की टेस्ट का अनुभव किया है, भागवतम का गुह्य विषयों में डूब चुके हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे भक्तों के मुख से अगर हम भागवतम सुनेंगे तो हम भी उसमें डूब जाएंगे। इसलिए हमें भागवतम सुनना है, भागवतम पढ़ना है, तो भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, तो उसमें कुछ अलग ही आनंद आता है। जैसे किचन में हम अगर कुछ मेनू बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स एक समान होते हैं और बनाने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं। अगर बनाने वाले जो कुक होते हैं, अगर कोई कुक एक्सपर्ट है तो वही इंग्रेडिएंट्स से वो अच्छा से अच्छा मेनू बना पाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसका, उसने अनुभव किया है, उसने टेस्ट किया है। उसी तरह से शुद्ध भक्त के मुख से अगर हम सुनेंगे तो हमें भागवतम की गुह्यतम जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। और ये जो भागवतम ग्रंथ है, ये भागवतम ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया है। जो कलयुग के आराध्य भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, और हम सबके गौड़ी वैष्णव के प्राणधन है गौरांग महाप्रभु, और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने इस भागवतम को प्रमाणित किया है। भागवतम ही इस कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए उनमें समर्थ है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमो पुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरणापरः। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या 5 भागों में करते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, मतलब जिनकी हम किसकी आराधना करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ब्रजेश मीन्स ब्रज, मतलब वृंदावन। ईश मतलब वृंदावन का जो राजा है, ईश्वर है, वो है नंद बाबा। ब्रजेश तनया, तनया का अर्थ होता है पुत्र, जो नंद बाबा के पुत्र है। नंद बाबा के कौन है पुत्र? श्री कृष्ण भगवान। तो उनकी आराधना करनी चाहिए। एक में वैसे व्यक्ति है, आराध्य भगवान है, और वो कहां रहते हैं? तद्धाम वृंदावनम। उनका धाम कौन सा है? वृंदावन नाम का धाम है, तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचित उपासना व्रजवधु, और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो भगवान की प्रिय भक्त गोपिया, जो वृंदावन में निवास करती है, और उन्होंने भगवान का भजन किया है, भगवान की भक्ति की है, और उनको आदर्श मानते हुए हमने, हम भगवान की भक्ति करना चाहिए। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, और गोपियों से भी पहले इतिहास में कई ऐसे बड़े बड़े भक्त हो चुके हैं, उनका नाम नहीं लेते श्री चैतन्य महाप्रभु, गोपियों का नाम ले रहे। क्यों गोपियों का नाम ले रहे? क्योंकि उन्होंने, गोपियों ने जो शरणागति दिखाई है भगवान के प्रति, जो अपनी भक्ति दिखाई है, वो भक्ति, उनकी जो भक्ति है उनकी तुलना और किसी की भक्ति से नहीं की जाती है। इसलिए हमेशा 24 घंटा कृष्ण भावना में रहने वाले ये गोपियां थी। सवर्णन किया गया है कि उत्थाय गोप्यो पररात्र भोगे स्मृत्वा यशोदा सुत बालकेलिम गायन्ति प्रोच्चे दधि मंथयन्तो गोविंद दामोदर माधवेति। सुबह सुबह उठकर गोपिया, उत्थाय गोप्यो पररात्र भोगे, जैसे ही गोपिया उठती थी और अपना पानी का घड़ा लेकर यमुना जाती थी पानी लाने के लिए, उत्थाय गोप्य पररात्र भोगे स्मृत्वा यशोदा, उठते उठते ही उनको स्मरण होता था यशोदा का, जो बाल नंद बाबा के जो पुत्र है, यशोदा का जो पुत्र है कृष्ण, उनकी लीलाओं का स्मरण होता था उनको। ये उनके जीवन का गोल था और उद्देश्य था, और ऐसा उनका कृष्ण भावना भावित जीवन था। और जैसे ही गोपियां सब एक साथ यमुना के नदी के तट पर आ जाती थी और एक दूसरे में हमेशा चर्चा करती थी कि कल श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी लीला की और उन लीला में से कौन से भाग किसको अच्छे लगे, ऐसे एक दूसरे में वार्तालाप करती थी। और आगे उनका वर्णन आता है, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोह वशात अवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, ये जो गोप कन्याएं थी मथुरा के मार्केट में जाती थी और वहां पे दही दूध और अपना घी बेचने के लिए जाती थी, और जब जैसे ही मार्केट में प्रवेश करती थी, जैसे हम साधारण तौर पर जो व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उस प्रोडक्ट का नाम लेकर अनाउंसमेंट करता है ना, उसी तरह से गोपियां मथुरा में जैसे प्रवेश करती थी वो दही लो तूप लो ऐसा कभी बोलती नहीं थी गोपियां, तो क्या बोलती थी, गोविंद दामोदर माधवेती, भगवान का नाम का चिंतन करती थी और उनका स्वाभाविक रूप से उनको स्मरण होता था भगवान का, इसलिए उनको बाह्य चेतना में वो कभी निवास ही नहीं करती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोपियों का उदाहरण दे रहे हैं और प्रमाण क्या दे रहे, श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमो पुमार्तो महान, श्रीमद भागवत इसका प्रमाण है और इसका भागवतम का फल क्या है, जो व्यक्ति इस भागवतम को श्रवण करेगा, भागवतम को अध्ययन करेगा, भागवतम दूसरों को कथन कराएगा, उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति और भगवान के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और आगे वर्णन आता है चैतन्य भागवत ग्रंथ में, सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवत है प्रेम रूप भागवत चारि वेद कै, चारि वेद दधि भागवत नवनीत मथि लेन शुके खाई लेनु परीक्षित। बहुत सुंदर इसमें अर्थ दिया गया है इस भागवतम का, चारी वेद की चारों जो वेद है इनकी तुलना दही से की गई है, दही के साथ इनकी तुलना की गई है। और जब हम दही को मंथते हैं, मंथन करते हैं उस दही का, उसमें से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, उसको नवनीत यहाँ पे संस्कृत शब्द में वर्णन किया है, नवनीत निकलता है मतलब मक्खन निकलता है, और मक्खन सभी मिल्क जो प्रोडक्ट है उसमें से सार रूप में मक्खन है, और उस मक्खन को सुखदेव गोस्वामी ने मंथन किया है, दही को सुखदेव गोस्वामी ने मंथन किया है और उसमें से मक्खन निकालकर परीक्षित महाराज को खिलाया है, और वो मक्खन है श्रीमद भागवतम। आगे श्रीमद भागवतम में वर्णन आता है कि भागवतम त्रिन जो ताप है इनका उन्मूलन करता है। बहुत सुंदर श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम वेद्ये वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयन मूलनम श्रीमद भागवतम महामुनि कृते किंवा परेरिश्वरः सद्योरुद्य तेत्र कृति भी सुश्रुषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत लंबा श्लोक है इस भागवतम का, ऐसा एक वर्णन आता है कि जो व्यक्ति दिन में एक बार कम से कम भागवतम का श्लोक पढ़ता है तो उसको, जो ब्राह्मण लोग तीन बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं सुबह दोपहर और शाम, उस गायत्री मंत्र का जप करने का फल मिलता है। एक भी श्लोक अगर कोई बोल लेता है तो मैं सबको निवेदन करता हूं, विनंती करता हूं कि सभी लोग कम से कम भागवतम का एक श्लोक तो कंटेस्ट कर लो और दिन में एक बार पढ़ ही लो, कम से कम अपने बच्चों को भागवतम के श्लोक कंटेस्ट करने का उनको प्रशिक्षण दो, इसके माध्यम से उनको भी अच्छे संस्कार होंगे। भागवतम में ऐसा इस श्लोक में वर्णन किया गया कि धर्म प्रोजित कैतवत्र, जो कैतव धर्म है इस भागवतम में निकाल दिया है उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी कोई वैल्यू नहीं इस श्रीमद भागवतम में, और तापो त्रयन मूलनम, और निर्मत्सर जो लोग है जो किसी का द्वेष नहीं करते हैं, जिनके हृदय में कोई भौतिक वासनाएं नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भागवतम है, मतलब जो भौतिक स्तर पर है उनके लिए नहीं है, ऐसा नहीं, जो भागवतम को जानना चाहते हैं वो भी धीरे धीरे निर्मत्सर बन जाते हैं, ये भागवतम की फलश्रुति है। तापोत्रयन मूलनम, जो आदि भौतिक आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक जो तीन ताप है इन तापों का उन्मूलन हो जाता है भागवतम पढ़ने से सुनने से। तो कोई सोचेगा कि प्रभु आप तो इतना सारा बता रहे हैं, हमारे जीवन में तो कुछ अलग ही समस्या है, कई लोगों के जीवन में फैमिली प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, एक दूसरे से जमता नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भागवतम क्या सॉल्व कर सकता है? निश्चित रूप से सवाल कर सकता है। अगर हम हमारी आदतें मनुष्य जैसी अगर हम बना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन भी आ जाता है। तो भागवतम यही सिखाता है हमें कि अनवांटेड जो अनर्थ है, अर्थ और अनर्थ ये दो शब्द है, अर्थ मतलब जो अर्थपूर्ण है और जो अनर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं जीवन में, ऐसे अनर्थ जो चीजें है कृष्णेर संसार कोरी छाड़े अनाचार, जो अनाचार है इस अनाचार की वजह से हमारे जीवन में दुख आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनाचार छोड़ के कृष्ण के लिए संसार करता है, संसार नहीं छोड़ना है हमें, पर संसार करते हुए जो अनाचार है अनाचार का त्याग करना है, मतलब पापमय जो जीवन है इसका त्याग करना है। अगर हम पापमय जीवन का त्याग कर देते हैं तो हमारा जीवन संसार नहीं होता है, वो भक्ति बन जाती है, पूरे भक्ति बन जाती है। हम जो भी जॉब कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, लिखा बड़े कर रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार कर रहे हैं, तो ये सब भक्ति बन जाता है, इसमें कोई भौतिक नहीं रहता है। तो ये भागवतम की भक्ति की महानता है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य है, फॉरेन कंट्रीज में ग्रंथ वितरण करते थे, वो अपना अनुभव बता रहे थे कि सभी जो डीओटी एक साथ शाम को आते थे ग्रंथ वितरण करने के बाद, और सबसे ज्यादा ग्रंथ वितरण एक डीओटी कर पाते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो भक्त थे उनको पूछा गया कि आप कैसे ग्रंथ वितरण करते हैं, तो वो बता रहे थे जैसे मैं ट्रेन में प्रवेश करता हूं तो प्रवेश करने के बाद मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं कि आपकी जो पेमेंट है, आपका जो पेमेंट है, पेमेंट डबल करो, आपका पेमेंट डबल करो, आपका पेमेंट डबल कर लो, ऐसे अनाउंसमेंट करते थे। और सब लोग उनकी ओर देखते थे, और उनका जो वेश था वो भक्त का वेश था, धोती कुर्ता पहने हुए थे, तिलक लगाए थे, और सब लोग उनके ऊपर और आकर्षित हो जाते थे और पूछते थे कि सबको पेमेंट की जरूरत है कि नहीं, हर एक व्यक्ति अपना प्रमोशन के बारे में चिंतन करते रहता है, अच्छा पेमेंट बढ़े, अच्छा जॉब मिले, तो सब लोग उनके ऊपर आकर्षित हो जाते थे और पूछते थे कि क्या लाए हैं आपने पेमेंट बढ़ाने के लिए। तो एक किताब दिखाते थे, और वो जो विशेष रूप से प्रकृति का जो नियम, प्रकृति का नियम ये जो किताब है श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ लॉ ऑफ नेचर, वो सबको देते थे। और उन किताब में, उस किताब में क्या लिखा है कि आप प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि अगर आप प्रकृति की विरुद्ध जीवन जिएंगे तो प्रकृति आपको तकलीफ देंगे। मतलब जो प्रकृति की जो प्रतिक्रिया है विरुद्ध रूप से हमें प्रतिकार करती है प्रकृति। तो प्रभुपाद जी इसलिए बताते हैं, इस ग्रंथ में बताते हैं कि आप मांसाहार करना छोड़ दो, नशापन करना छोड़ दो, जो अलग अलग स्त्रियों के साथ आप संपर्क करते हो वो छोड़ दो, और व्यभिचार, नशापन, जुआ खेलना छोड़ दो। और मैक्सिमम पाश्चात्य देशों में लोगों की इन चार चीजों में इतने पैसे उड़ाते हैं कि आधा से ज्यादा पेमेंट इसमें उड़ा देते हैं। इस कारण से उनका, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे भी होते हैं पर इंद्रिय भोग में लगा देते। और ये है तापोत्रयन मूलनम। अगर हम हमारी आदतें बदल देंगे, हमारा जीवन कृष्ण भावना भावित बना देंगे, तो निश्चित रूप से तापोत्रयन मूलनम, मतलब इस संसार में जिंदगी कैसे जीना है ये भागवतम सिखाता है, और इस संसार से कैसे निकलना है ये भी भागवतम सिखाता है। और इस संसार में रहते हुए केवल मनुष्य जैसा नहीं जीवन जीना है, तो नरोत्तम बन जाता है व्यक्ति अगर भक्ति करते करते इन सारे जो लोग है, मनुष्य है, इन मनुष्यों में से वो मनुष्य नहीं रहता है, वो एक विशेष रूप से मनुष्य की गिनती हो जाती है उसकी, और उसको देखकर देवता भी खुश होते, आनंदी होते हैं उसको देखकर। तो ये भागवतम की महानता है। और आगे सनातन गोस्वामी अपना अनुभव बताते भागवतम के बारे में, बहुत सुंदर है। मदैक बंधु मत संगी मत गुरु मन महाधना मनिस्तारक मदभाग्या महानंद नमोस्तुते। सनातन गोस्वामी बताते हैं, सनातन गोस्वामी का जीवन पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, उसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं सनातन गोस्वामी। और डूबने के बाद जब बाहर आते हैं सनातन गोस्वामी तो ये उनका साक्षात्कार निकलता है। वो बताते हैं कि भागवतम कौन है, भागवतम मदैक बंधु, मेरा बंधु है भागवतम, मतलब मेरे रिश्तेदार है भागवतम। आगे बताते मत्संगी, मेरा सबसे फेवरेट फ्रेंड है। आगे बताते मदगुरु, मेरा गुरु है भागवतम। और मन महाधना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति भागवतम है। और आगे बताते कि मनीष तारक, मेरा उद्धारक है भागवतम, मेरा रक्षक है भागवतम। आगे बताते हैं मद भाग्या महानंद, महानंद मेरा भाग्य भी भागवतम है, और मेरे जीवन का जो आनंद है वो भी भागवतम है, और ऐसे भागवतम को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। ये सनातन गोस्वामी का रियलाइजेशन है। और इस भागवतम को रोज नित्य रूप से पढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति इस भागवतम को अपने घर में रखता है उसका फायदा क्या होता है, इस चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन किया गया है। भागवत पुस्तक तथा कयार घरे कोन अमंगल नाही याये तथा करे। भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा है, भागवत पठन श्रवण भक्ति है। बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। जिसके घर में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है उसके घर में कभी अमंगल नहीं हो सकता, ने आत्मविश्वास से यहाँ पे बताया गया है। और आगे बताते हैं कि भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा है। अगर हम भागवतम की पूजा करते हैं, कभी कभी हम ट्रेवलिंग में होते हैं या भगवान के फोटो या विग्रह हमारे पास नहीं है, तो हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को ऑफरिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रंथ भागवतम और भगवान श्री कृष्ण इसमें कोई भेद नहीं है। भागवतम की पूजा आगे बताते, भागवत पठन श्रवण भक्ति है, मतलब भागवतम का असली पूजा असली श्रवण भागवतम को खोलने के बाद पढ़ने से होती है, इसका अर्थ ये बताया गया है। तो कई ऐसे भागवतम की महानता के बारे में श्लोक है, हम कुछ ही समय में इसका वर्णन और कम से कम समय में प्रयास करेंगे। और भागवतम सुनने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है इसके बारे में और एक श्लोक है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम। बहुत सुंदर श्लोक है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, अगर कोई भागवतम सुनता है पढ़ता है भागवतम, तो उसको नवम नम नवम मतलब बार बार आनंदाम बुद्धिवर्धनम, उसके जीवन का आनंद बढ़ता है, उसकी रुचि और बढ़ने लगती है। ये भागवतम सुनने की महानता है। तदेव शश्वन मनसो महोत्सवम, मतलब मन का महोत्सव मतलब भागवतम क्लास है, भागवतम है। हम जैसे किसी की शादी में जाते हैं या किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम महोत्सव में फेस्टिवल में भाग लेते हैं, तो फेस्टिवल में हम जब रहते हैं उस फेस्टिवल में उस महोत्सव में, तो हम शरीर के रूप में वहां पे उपस्थित होते हैं पर हमारा मन कुछ और जगह रहता है। अगर हम भागवतम सुनते हैं भागवतम पठन करते हैं तो मन का उत्सव बन जाता है। मन का उत्सव मतलब हमारा जो ये चंचल मन है वो मन धीरे 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 स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर होता है? क्योंकि आत्मा का और भगवान का नित्य संबंध है, और उस संबंध जैसे ही जुड़ जाता है वैसे मन भी लगने लगता है। तो ये भागवतम की महानता का वर्णन है। और इस भागवतम में दो चीजों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। खाली फिलॉसफी नहीं है या केवल तत्वज्ञान नहीं, इस भागवतम में भगवान की लीला का भी वर्णन किया गया है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है भागवतम में भगवान की महानता और भगवान की मधुरता इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और कोई व्यक्ति भगवान की महानता के साथ भागवतम पढ़ता है, भागवतम की मधुरता का आस्वादन करता है, तो उसके जीवन में आत्मरंजन होता है, मतलब उसका आत्मा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो संत तुकाराम महाराज एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है, वे अपने अनुभव से बताते कि भगवान की महानता और भगवान की मधुरता। बहुत सुंदर अभंग है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरि हा बालक नंदा घरी नवल केवड़े केवड़े न कड़े कानो बाचे कोड़े पृथ्वी जेने तृप्त केली यशोदा त्यासी भोजन घाली विश्वव्यापक कमळापति विश्वव्यापक कमळापति गौळणी त्यासी कड़े घेती तुका म्हणे नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी। बहुत सुंदर अभंग है। अनंत ब्रह्मांड उदरी मतलब जिनके उदर से जिनके शरीर से अनंत अनंत ऐसे ब्रह्मांड अनगिनित ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसे भगवान जो है हरि हा बालक नंदागिरी बाल रूप में भगवान नंद बाबा के आंगन में खेलते हैं, नंद बाबा की गौशाला में खेलते हैं, नंद बाबा की जो गैया है उनके गोबर में खेलते हैं। तो ये भगवान की मधुरता है और ये भगवान की महानता है। आगे वर्णन करते हैं। नवल केवड़े केवड़े न कड़े कानोभाचे कोड़े, मतलब इन कितना आश्चर्य है कि नहीं। तो ये जो गुह्य भगवान की लीला है ये समझ में नहीं आ रही मुझे, ऐसे संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं। और आगे बताते हैं कि पृथ्वी जेने तुप्त केली मतलब जिनकी शक्ति से सभी संसार के चर अचर जीव का पालन पोषण होता है। पृथ्वी जेने तृप्त केली यशोदा त्यासी भोजन घाली, ऐसे भगवान को यशोदा मैया अपने हाथ से उनको भोजन खिला रही है। तो ये भगवान की लीला की महानता है। विश्वव्यापक कमलापति जिनकी शक्ति से सभी ग्रह सभी ब्रह्मांड स्थिर है अपने अपनी जगह में, और उनकी भय से सूर्य उगता है चंद्र उगता है अपनी सेवा में लगे हुए हमेशा के लिए, उनकी शक्ति से सब कुछ चल रहा है। ऐसे भगवान को गौड़नी त्याशी कड़े गेती, जो वृंदावन की गोपिया है, अपनी गोद में लेकर गोपिया वृंदावन में घूमती है। तो ये भगवान के भक्तों के साथ आदान प्रदान है। और तुकाम हने नटधारी, आगे कहते हैं कि तुकाम हने नटधारी भोग भोगुनी ब्रह्मचारी, ऐसे भगवान पूरी दुनिया का भोग लेते हैं फिर भी वो सबसे बड़े ब्रह्मचारी है। तो ये भगवान की मधुरता का और महानता का वर्णन इसमें आता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस संसार के जो वृंदावन वासी है, जो ब्रजवासी है, कितने भाग्यशाली है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासी की भाग्य की क्या महिमा है, कितने भाग्यशाली है ब्रजवासी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम, ऐसे भगवान को अपने मित्र बना लिया है, अपना प्रियकर बना लिया है, और इस भाव से अपना पुत्र बना लिया है, इस भाव से आदान प्रदान कर रहे हैं। और कितना बड़ा भाग्य, और इनका भाग्य कैसे उज्जवल हुआ, भागवतम की विधि का पालन करने से। अगर हम धीरे धीरे भागवतम के ज्ञान का हमारे जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होगा, और इसी जन्म में, और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ये भागवतम की महानता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी 5 मिनट चर्चा करेंगे। भागवतम केवल फिलोसॉफी नहीं है, भागवतम केवल सुनने के लिए नहीं है, भागवतम हर एक व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति इस संसार में असंतुष्ट है उनको, उनके लिए संतुष्टि प्रदान करने वाला है श्रीमद् भागवतम है। और इस भागवतम के अंदर ऐसी अलग अलग कथाएं वर्णन की गई है, जैसे भगवद्गीता में फिलोसॉफी है और वो तत्व ज्ञान जो है भगवद्गीता का, भगवद्गीता में कोई स्टोरी नहीं है, और वही स्टोरी उदाहरण के रूप में जो जिन भक्तों ने इस फिलोसॉफी के अपने जीवन में पालन किया है उन भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। जैसे कुंती महारानी का वर्णन आता है, पांडवों का वर्णन है, भीष्म पितामह का वर्णन आता है, और आगे जाके राजा परीक्षित की कथा है, माता देववती, कर्दम मुनि का संवाद आता है, ऐसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, ऐसी अलग अलग कथाओं का वर्णन है। ये कथा सुनकर हमें भक्ति करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम तो घर गृहस्थी में पड़े हैं, हमारा कोई चांस है नहीं ऐसी भक्ति करने का, पर ऐसा नहीं है। भागवतम सबके लिए, जो मुक्तात्मा है इस संसार से मुक्त हो चुके उनके लिए भी भागवतम है, और जो संसार के भोग में पड़े हुए उनके लिए भी भागवतम है। भागवतम सबके लिए है, तो इसलिए भागवतम में वर्णन आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो वा, किसके अंदर कोई कामना नहीं है, या किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, ऐसे व्यक्ति भी श्रीमद् भागवतम की भक्ति की शरण में आ सकता है। इसका उदाहरण ध्रुव महाराज का है भागवतम में। ध्रुव महाराज का जब अपमान हुआ अपनी सौतेली मां से, तो बहुत ही तिलमिला गए थे ध्रुव महाराज, और ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको राज्य चाहिए था, और वो अपनी माँ सुनीति के पास गए और अपनी माँ के पास रोते हुए गए और बताया कि मैया मेरा इस तरह से अपमान हुआ है, तो मुझे ऐसा एक मार्ग बताओ कि मैं जिस मार्ग का पालन करने से ब्रह्मा जी से भी ऊपर और ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बढ़कर मैं राज्य प्राप्त कर सकूं। तो अपनी माँ जो होती है सुनीति, बहुत ही सुनीति का बहुत बड़ा रोल है उसमें। आजकल की माताओं के पास अगर कोई बेटा आता है तो रोते हुए उसको कुछ चाहिए तो एक चॉकलेट या कैडबरी देके उसको खुश करके भगा देती है, पर सुनीति मैया का जो रिप्लाई है बहुत ही सुंदर है। सुनीति माता बोलती है कि इस संसार में ऐसे एक व्यक्ति है जो भगवान, जो आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, इसलिए आपको वन में जाना पड़ेगा, जंगल में जाओ, और वहां पे जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस तरह से आप भी भगवान की भक्ति करो। तब ध्रुव महाराज निकलते रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं, और नारद मुनि की कृपा से उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है कुछ ही समय में। और जब नारद मुनि के सामने भगवान प्रकट होते हैं, तब नारद मुनि की प्रतिक्रिया बहुत सुंदर है, काचम विपिन्नम अपि दिव्य रत्नम है, प्रभु मैं आपको प्राप्त करने के लिए, मैं इस धन के प्राप्त करने के लिए आपका भजन किया, ये तो सब कांच के टुकड़े के समान है, लेकिन असली जो हीरा है, वो जो डायमंड है, वो आपका रूप है, आपका रूप देखकर मेरे हृदय की सभी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो गई। लेकिन भगवान ने सोचा कि अरे ध्रुव महाराज, भले आपकी भौतिक इच्छा नष्ट हो चुकी है, पर अगर आपको मैं खाली हाथ भेज दूं तो लोग मेरी निंदा करेंगे कि ऐसे भी भगवान है, इतना छोटा सा बच्चा, इन्होंने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, केवल 6 महीने में आपको प्रसन्न कर लिया, और इस छोटे बच्चे को आपने मीठे बोली से उसको भुला दिया सब कुछ, इसलिए भगवान ने उसको ध्रुव लोक दिया, भौतिक संपदा भी दी, और साथ साथ ध्रुवलोक का राज्य भोगते हुए भी वो इस संसार के भोग के प्रति आसक्त नहीं होंगे, ऐसा वरदान भी दिया। तो ये भगवान का परफेक्ट वरदान होता है, और कभी उनको अहंकार नहीं आया अपने धन का। और इस संसार में रहने के बाद भी इस संसार में कैसे निकलना है इसके बारे में भी उनका वर्णन ध्रुव महाराज का आता है। और श्रीमद् भागवतम वास्तविक रूप से औषधि है। श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया गया भक्ति है, भगवान की लीला है, भगवान का गुणगान है, ये वास्तविक रूप से औषधि। इसलिए भागवतम जब प्रभुपाद जी देते पाश्चात्य देशों में प्रवचन करते थे तो उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे। पहले से ही बंगाली थे प्रभुपाद जी, और उस बंगाली ट्यूनिंग में इंग्लिश बोलते थे, और उनको काफी दिनों तक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। फिर भी वे लोग सुन रहे थे, सुनते सुनते भागवतम की कृपा से, भागवतम की वाणी से वो लोग शुद्ध बन गए। इसलिए इसे कहा जाता है कि भागवतम कोई शब्दों का वार्तालाप नहीं है, भागवतम एक विचारों का वार्तालाप है। भले शब्द हमें क्यों न शब्द हमें भले ना समझे, पर हम भागवतम सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में, मन के अंदर प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरोहम, प्रविष्ट हमारे कर्ण से भागवतम की वाणी जब हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे हमारे हृदय की जो अनर्थ है वो निकलने लगते हैं। इसलिए भागवत में और विशेष रूप से वर्णन आता है। भागवतम ऐसा वर्णन आता है कि भागवतम जो है हमारा हृदय है, सॉरी भगवान का एक हृदय है। भगवान ने अपने भक्तों के सामने अपना हृदय खोल दिया है, मतलब भगवान ने अपने जो आंतरिक भाव है भगवान का इस भागवतम ग्रंथ के माध्यम से प्रकट किया है, और हम उसी के सामने अपना हृदय प्रकट करते हैं जो हमसे रिलेशन में क्लोज हो। इसलिए हमारा और भगवान का बहुत नित्य संबंध है। ममय वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के नित्य अंश होने के कारण भगवान हमसे बहुत ही क्लोज संबंध है हमारा। तो इसलिए भगवान की गजेंद्र की लीलाओं में से हम बहुत सुंदर शिक्षाएं लेते हैं। अजामिल की कथा है, जब गजेंद्र ने भगवान से पुकारा तो गजेंद्र की प्रार्थना में एक भी भगवान का प्रत्यक्ष रूप से नाम लिया नहीं, फिर भी भगवान कैसे आ गए? तो गजेंद्र पूछते भगवान को है कि प्रभु मैंने तो आपको कभी बुलाया नहीं, फिर भी आप कैसे मेरे सामने प्रकट हो गए? तब भगवान गजेंद्र को बताते हैं कि जब आप स्तुति कर रहे थे, जब आप गुणगान कर रहे थे, तो उन स्तुतियों में, उन प्रार्थना में मैं क्वालिटी ढूंढ रहा था कि आप जो जिस गुणों का वर्णन कर रहे हैं इन गुण वाला इस ब्रह्मांड में तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये गुण है तो मेरे अंदर मैच हो रहा है। तो भगवान ने उन प्रार्थना में जो गुण का वर्णन किया गया उन गुणों से अपना स्वभाव मैच करके गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए और गजेंद्र का उद्धार किया। आगे अजामिल की कथा आती है, अजामिल ने भी भगवान को पुकारा नहीं था, अपने पुत्र को पुकार रहे थे नारायण नारायण, फिर भी भगवान ने अपने जो पार्षद है, चार पार्षदों को अजामिल की रक्षा करने हेतु भेज दिया। और दूसरा तीसरा एक उदाहरण आता है, वृंदावन में एक पुतना नाम की एक राक्षसी थी, अपने मन में भगवान को मारने के उद्देश्य से वो आई थी, लेकिन बाह्य जो भाव था उसका एक माँ के स्वरूप भाव था, और माँ के भांति वो कृष्ण से आदान प्रदान कर रही थी। और तब कृष्ण ने देखा कि इस दुष्ट प्रवृत्ति वाली जो पुतना है इसका इसमें कौन सा अच्छा गुण है जिससे मैं इसका उद्धार कर सकूं। तब भगवान ने देखा इस पुतना के अंदर मेरी सेवा करने की इच्छा है, वो भी वात्सल्य भाव में मां के रूप में। तब भगवान ने अहो बकियम स्तन कालकुटम जिघांस यापा ये दप्य साध्वी से उद्धव जी वर्णन करते कि अहो बकियम, बकी जो है बकासुर की बहन, वो कालकुट जो जहर है अपने स्तन को लगाकर कृष्ण को मारने हेतु आई थी, और भगवान कृष्ण ने उसके अंदर एक वात्सल्य भाव के रूप में देखा और उसको अपने धाम में धात्री का स्थान दे दिया। और उद्धव जी कहते हैं अगर इनसे दयालु और कोई व्यक्ति है इस संसार में तो उनकी मैं शरण ले सकता हूं। तो ये अलग अलग आचार्य का और भक्तों का भाव है। तो हम नित्य रूप से इस श्रीमद् भागवत का अगर पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे, और यही वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और संतुष्टि अगर पाना है तो हमें नित्य रूप से कम 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा, अगर किसी को समय है तो ज्यादा समय पढ़ सकते हैं। और आज से जन्माष्टमी एक महीना है तो सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि ये जो कृष्णा बुक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसमें भगवान की मधुरता का वर्णन किया गया है। इसमें करीब 950 पेज है। अगर हम रोज 30 पन्ने भी पढ़ेंगे, 30 पेज भी पढ़ेंगे, तो हम इस कृष्णा बुक को जन्माष्टमी तक पूरी तरह से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबको निवेदन करते हैं कि इस ग्रंथ का सब लोग रोज अध्ययन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।